आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
जोहानिसबर्ग में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका रवाना हो गए हैं। आज सुबह रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक को महत्वपूर्ण बताया है। विदेश मंत्रालय में अधिकारी सुधाकर दलेला ने बताया कि G20 के अलावा प्रधानमंत्री मोदी IBSA लीडर्स बैठक में भी शामिल होंगे।
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल बी विजिटिंग जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका फ्रॉम 21st to 23rd ऑफ नवंबर to attend the G20 leader summit at the invitation of President of South Africa. PM will be participating in the IPSA India Brazil South Africa leaders meeting as well as holding bilateral meeting with several leaders who will be present in Johannesburg. This is the first G20 summit that will be happening on African soil, and in that context will bring the spotlight on the development issues of Africa as also of the global south.
G20 की बैठक दक्षिण अफ्रीका में पहली बार हो रही है। भारत की दृष्टि से इस बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए सुधाकर दलेला कहते हैं,
The summit will be important for India to ensure continuity of its priorities in the G20 after having hosted a very successful presidency in 2023. As you are aware, the G20 has emerged as a premium forum for international economic cooperation as well as for discussing matters of global significance. The G20 provides an excellent opportunity for the leaders of these large economies and emerging economies representing over 85% of global GDP and around 3/4 of the world population to come together and discuss important issues impacting the world.
भारत और इजराइल मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत कर रहे हैं। गुरुवार को तेल अवीव में दोनों देशों के बीच बातचीत के रोडमैप पर हस्ताक्षर हुए। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि इस समझौते से दोनों देशों को फायदा मिलेगा। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने इजरायली निवेशकों को भारत में आने का न्योता भी दिया।
I am very confident that the speed, the scale, the skill, the talent that India offers, the investor-friendly, predictable atmosphere to do business provides huge opportunities for business persons from both sides, opportunities in technology, could be fintech, could be agri-tech, could be artificial intelligence, could be quantum computing, could be machine learning, pharmaceuticals, space, most important of all, defense, unlimited possibilities.
बिहार में नई सरकार ने अपना कामकाज संभाल लिया है। विधानसभा चुनाव में NDA की प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार ने गुरुवार को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार के अलावा 25 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। 3 महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल में LJP रामविलास के कोटे से 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया। पार्टी के नेता चिराग पासवान ने आने वाले दिनों में जनहित में काम करने की बात कही है।
ये विश्वास मैं बिहार की जनता को भी दिलाना चाहूंगा कि जिस उम्मीद के साथ पार्टी को इतना बड़ा और गठबंधन को इतना बड़ा जनादेश दिया गया है, उनकी जिम्मेदारियों का एहसास भी है मुझे। आने वाले समय में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ हम लोग बिहार को विकसित राज्य बनाए, इस लक्ष्य के साथ हम लोग अग्रसर होंगे। मैं इतना जरूर मानता हूं कि अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल की तरह होंगे। ये अगले 5 साल बिहार को विकास के अलग अलग मापदंडों पर ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी, ये विश्वास जरूर मैं बिहार की जनता को दिलाना चाहूंगा।
चुनावी धांधली और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल खड़ा कर रही कांग्रेस पार्टी अब देश भर में प्रदर्शन करने की बात कह रही है। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को मताधिकार पर चोट बताते हुए इसका विरोध पार्टी कर रही है। इसी को लेकर 14 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली बुलाई गई है। लगभग 5 करोड़ लोगों ने कांग्रेस के इस अभियान को अब तक अपना समर्थन दिया है, ऐसा पार्टी का दावा है। पंजाब में लगभग 27 लाख लोग कांग्रेस पार्टी के अभियान से जुड़ चुके हैं। इस बारे में बताते हुए पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावर्डिन कहते हैं,
जिस प्रकार से पूरे देश भर में वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी करके देश के अंदर भी सरकारें बनी और राज्यों में भी सरकारें बनी, जिसका पूरा पर्दाफाश आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक एक चीज सबूतों के साथ देश के सामने रखा। पूरे देश भर में एक सिग्नेचर कैंपेन चला था जिसके तहत हमारा टारगेट था कि कम से कम 5 करोड़ हम सिग्नेचर लोगों के बीच जाकर गली गली जाकर उन लोगों को बताना है कि बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार को छीना जा रहा है।
और अंत में चर्चा गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की। इस महोत्सव की स्थापना 1952 में की गई थी। इसके 56वें संस्करण की शुरुआत गुरुवार को हुई है। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा,
The India is emerging as a global soft power, and under the leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, an Indian cinema reaching at the international heights. The IFFI is now a platform where the Indian creators, producers, and the storytellers meets the world, and Goa is proud to be the gateway for this global experience. Our commitment is clear: make Goa as a Creative Capital of India, strengthen the film infrastructure, support Goan filmmakers, bring the world cinema to Goa and promote the Goa as an international filming destination, build a year-round filmmaking ecosystem.
20 से 28 नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में 81 देशों की 240 फिल्मों को शामिल किया गया है। इस बार जापान पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।